आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, आई एम देवांगना द्विवेदी एंड हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का फिफ्थ चैप्टर। तो आज हमें स्टार्ट करना है पेज नंबर 51 से, फ्रॉम द सेकेंड पैराग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट। हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। मतलब जितने भी हिमालयन रीजन्स होते हैं, वहां पर जो पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी होती है उतने एक्सट्रीम कंडीशंस को बेयर करने की, उसको सहने की। जैसे कि वहां पर क्या क्या पाए, लद्दाख की जो बर्फीली ऊंचाइयां है, वहां पर याक पाए जाते हैं, जिनके ना बहुत ऐसे गुच्छेदार सींग होते हैं और वो एक बैल जैसा जीव होता है। उसके बहुत घने घने बाल होते हैं, मतलब फर बहुत घने घने उसके होते हैं। उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, कम से कम 1 टन उसका वेट होता है। तिब्बतीय बारासिंघा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग, तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो तिब्बतीय बारासिंघा पाए जाते हैं, नीली भेड़ मिलती है, जंगली भेड़ और जंगली गधे भी यहाँ पर मिलते हैं। क्योंकि इनके अलावा जो बाकी के एनिमल्स हैं, जो कि नॉर्दर्न लैंड्स में रहते हैं, हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट इन सब में, जैसे शेर हो गया और हमारा ये बब्बर शेर हो गया, उसके बाद एलिफेंट हो गया, तो ये सारे उस जगह पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहां पर ऐसे पोलर बेयर और इस टाइप के सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। तो कहीं कहीं पर कुछ ऐसे जगह है जहां पर लाल पांडा भी देखने को मिल जाते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। मतलब जहां पर भी नदियां होती हैं, जहां पर भी लेक होते हैं, वहां पर आपको कछुए मिलेंगे सबसे मेनली। मछलियां तो सभी जगह होती है जहां पानी होता है, तो मछलियां और कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल। घड़ियाल और मगरमच्छ में बस इतना अंतर होता है कि मगरमच्छ का मुंह चपटा होता है और जो घड़ियाल होता है उसका मुंह ऐसे लंबा और पतला सा होता है। तो ये सारे जो पानी के जानवर है, ये आपको वहां पर मिलेंगे। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। मतलब जो घड़ियाल है वो मगरमच्छ का एक ऐसा कैटेगरी है, जो मैंने आपको बताया ना, वो होता मगरमच्छ की तरह ही है, लेकिन उसका मुंह काफी लंबा और सकरा होता है। तो वो सिर्फ ऐसा स्पीशीज है मगरमच्छ फैमिली का कि वो हमारे यहाँ भारत में सिर्फ पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में पाई में रहती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे कि तोता, मैना, मोर, कबूतर, जो कि हमारे यहाँ ये जो स्पीशीज हैं, ये हमारे यहाँ के जंगलों में भी और जो बाकी जगह होते हैं वहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों से के निचय से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्राकृतिक द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास जो प्रकृति में इतनी सारी चीजें थी, इतने सारे पेड़ पौधे थे, उसमें से हमने ऐसे पेड़ पौधे चुने जो हमें खाने पीने में मदद कर सके और खाद्य भंडार हमारा बना सके। दूसरा, हमने उन पौधों पर भी एक्सपेरिमेंट किया, उनको भी यूज किया जो कि मेडिसिनल प्लांट हुआ करते थे, जो कि जड़ी बूटियां हुआ करती थी, जिससे हम जितने भी रोग हैं उनसे निदान पा सके। फिर हमने जो प्रकृति में इतने सारे जानवर हैं, उनमें से हमने ऐसे जानवरों को चुना जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं बहुत सारी फार्मिंग एक्टिविटीज में, बोझ ढोने के लिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनने के लिए। तो हमने ऐसे एनिमल्स को चूज किया जिनको हम पाल सकते हैं और उनको अपने कामों के लिए हम यूज कर सकते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकौड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। मतलब ये जो जानवर होते हैं इनसे हमको फ्लैश मिलता है, मांस यानी कि उनकी स्किन जो हम खाते हैं, और अंडे भी मिलते हैं। फिर मछली जो होती है, मछली जो लोग खाते हैं जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, तो मछली एक बहुत ही पौष्टिक आहार मानी जाती है, उससे बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है आपको। आपने गौर किया होगा कि आप अगर साउथ साइड जाओगे तो वहां के जो बच्चे जो लड़कियां होती हैं उनके बाल बहुत ज्यादा घने होते हैं, रीजन बीइंग क्योंकि वो लोग फिश खाते हैं, फिश में इतना ज्यादा प्रोटीन होता है जो बाल बहुत अच्छे रखता है। फिर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं फसलें फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों और जैविक नियंत्रण रखते हैं, मतलब जो कीड़े छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो बहुत जो फसलें हैं उन पर हमें उनसे कंट्रोल रखना पड़ता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बाकी कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, जो पक्षी होते हैं वो कीड़े वगैरह खाते हैं जो खेत में लगते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। मतलब हर एक स्पीशीज का, हर एक एनिमल का, हमारे पूरे जो ये डायवर्सिटी है, बायोडायवर्सिटी है, उसमें बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें सभी को कंजर्व करना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलन हो गया है, मतलब जैसे हमें पहले बताया गया है कि हमने जिस तरीके से हमारे जो फ्लोरा एंड फौना को हमने खराब किया है, जितने पेड़ पौधे उनको काटा है, जानवरों को बेघर कर दिया है जंगल से, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि पूरा जो इकोसिस्टम है वो पूरा बिगड़ चुका है। इकोसिस्टम क्या होता है कि जिसमें जो एनिमल्स होते हैं वो प्रकृति के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब अगर हम उसे छेड़ेंगे, पेड़ ज्यादा काट देंगे, एनिमल्स को हटा देंगे वहां से, तो उसकी वजह से वो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी 1300 ऐसी कुछ स्पीशीज हैं पेड़ पौधों की जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज बन चुकी हैं, और कुछ जो 20 स्पीशीज हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, अब बाकी ही नहीं बची हैं। बहुत सारे जो वन्य प्राणी हैं वो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज में, और कुछ ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं, अब है ही नहीं। जैसे डायनासोर आपको पता है अब नहीं है दुनिया में, पर डायनासोर तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई। आपने अगर किसी साइंस म्यूजियम में जाओ, आप साइंस सेंटर में जाओ आपके शहर में अगर हो, तो उसमें आप जाकर देखोगे वहां पर बहुत सारे जो अर्ली एनिमल्स हुआ करते थे जो अब नहीं पाए जाते हैं, उनके स्पेसिमेंस रखे रहते हैं एक स्पेशल काइंड ऑफ सोल्यूशन में ताकि वो खराब ना हो। तो मेरे यहाँ जो साइंस सेंटर है वहां का जो रिसेप्शन है वहां पे रखे रहते हैं सारे एनिमल्स के स्पेसिमेंस। तो उसमें क्या था, एक लिजर्ड थी जिसके पंख थे, मतलब उड़ने वाली छिपकली थी, और भी ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े और ऐसी ऐसी कुछ चीजें थी जो आपने अब सोच आपको ये देखकर लगता होगा कि अरे ऐसा भी कुछ होता था क्या, बट ऐसा वो सारी चीजें पहले हुआ करती थी। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है, मतलब जो इकोलॉजिकल बैलेंस इतना बिगड़ा है तो उसका सबसे बड़ा जो अगर हम कहें कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो सबसे ज्यादा वो सारे ट्रेडर्स, वो सारे बिजनेसमैन रिस्पॉन्सिबल हैं जो अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए शिकार करते हैं जानवरों का, क्योंकि उनकी स्किन जो होती है, लेदर जिससे बनता है, वो बहुत ज्यादा महंगी बिकती है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजावी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करने के क्या क्या रीजंस हैं, कि रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट, मतलब बहुत ज्यादा जो जितने भी इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट में डिफ्यूज होते जा रहे हैं, तेजाबी जमाव हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड और ये सब बहुत मतलब हवा में निकलता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। फिर जितनी भी फॉरेन ब्रीड्स हैं, जितनी भी फॉरेन स्पीशीज हैं वो आ रही हैं, फिर हमें कृषि और कृषि के लिए, मतलब खेती करने के लिए और अपने घर बनाने के लिए, रहने के लिए हम जो जंगल है उनको बिल्कुल अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं और पेड़ नहीं उगा रहे हैं। अगर हम जंगल काटे और साथ में पेड़ भी उगाएं तो एक वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो नहीं बिगड़ेगा। बट हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पेड़ काटते जा रहे हैं घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इंडस्ट्री डालने के लिए, फैक्ट्री डालने के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस इफेक्ट होता है। पिछले पेज में आ जाइए जरा, पेज नंबर 51 पर। यहाँ आप देख सकते हैं लायन की पिक्चर है और उसके बगल में लिखा है, क्या आप जानते हैं एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगल में पाए जाते हैं। मतलब जो एशियन जो लायन है वो सिर्फ आपको गुजरात के गिर जंगल में मिलेंगे। मतलब सोचिए इनकी जो तादाद है वो कितनी कम हो गई है, एशिया में और कहीं नहीं मिलते हैं ये। अब जरा इस ब्लू बॉक्स पर आ जाइए नीचे। परियोजना कार्य मतलब प्रोजेक्ट वर्क आपको गिवन है। फर्स्ट है इसमें, उपरोक्त समाचार पत्रों के अंशों में कौन से समाचार महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। तो आपको ऊपर देखना है, पढ़ना है कि कौन से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये न्यूज हेडलाइंस लग रही हैं। नाउ कम टू सेकेंड वन, इस प्रकार की संकट ग्रस्त प्रजातियों की और सूचनाएं समाचार पत्र और पत्रिकाओं से एकत्र कीजिए। तो ये आपको करना है कि इनके जो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है जिन भी जानवरों के बारे में, तो उनके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। अब हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए या इनको सेव करने के लिए क्या क्या ऐसे कदम उठाए हैं, उसके बारे में भी हमें पता लगाना है। फोर्थ वन इज, आप संकटग्रस्त जानवर और पक्षियों को बचाने के लिए क्या सहायता कर सकते हैं। तो इसमें सारी चीजें आपको पहले तो ये पता लगानी पड़ेगी फोर्थ पॉइंट में कि कौन से ऐसे संकटग्रस्त जानवर हैं जो आपके लोकेलिटी में पाए जाते हैं। जैसे ज्यादातर पक्षियां होती हैं, अगर आप देखें तो पहले के टाइम पर जो छोटी वाली वो चिड़िया आती ना, गौरैया चिड़िया जो हमें आसपास अपने घर के बाहर दिख जाती थी, पहले बहुत दिखा करती थी, लेकिन अब बहुत कम ऐसा होता है कि वो नजर आए। तो उनकी जो प्रजाति है वो विलुप्त होने वाली है, मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज बन गई है वो छोटी सी गौरैया चिड़िया जो कि बहुत नॉर्मली देखी जाती थी। तो उनको बचाने के लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे आप उनके लिए दाना पानी रखना शुरू कर दो अपने घर के छत पर, या फिर अपने घर के किसी पेड़ वेड़ पर उनके लिए छोटा सा वो कटोरा लटका दो जिसमें पानी रहे, चावल रहे। चावल वो बहुत अच्छे से खाती है, अगर आप चावल डालोगे तो वो खाएंगी। तो इससे क्या होगा कि वो आपके घर में जब आके खाना खाएंगी, सब कुछ करेंगी, तो उनका जीवन और बढ़ेगा और एक नहीं बहुत सारी चिड़िया एक साथ आएंगी। तो आप ऐसे करके उनको बचा सकते हो। फिर एक आप ऐसा भी कर सकते हो कि बर्ड बाथ के लिए उनके लिए बड़े से बाउल में मिट्टी के पानी भर के रख दो, तो वो नहाएंगी भी, सब कुछ, मतलब उनका हैबिटेट जो है काफी अच्छा चेंज हो जाएगा, काफी अच्छा हो जाएगा। वापस आ जाइए अगले पेज पर, थर्ड पैराग्राफ के नीचे, अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मतलब अपने यहाँ के फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें सबसे पहला है, देश में 18 जीव मंडल निचेय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पचमढ़ी और अचन कमर अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निचेय में की गई है। मतलब यहाँ पर इकोसिस्टम बना दिया गया है और यहाँ पर रिजर्व एरिया कर दिया गया है एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए। सेकेंड इज, सन 1992 के से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। मतलब 1992 में जितने भी हमारे पेड़ पौधे वाले जितने भी बागान हैं, उद्यान हैं, उन सबको टेक्नोलॉजिकल कंजर्वेशन देने का एक रूल बनाया गया था। देन थर्ड इज, शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। मतलब इन सारे जानवरों को बचाने के लिए बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। फोर्थ इज, 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। मतलब ये सारे जो चीजें हैं, ये मतलब जू बनाए गए हैं, इकोसिस्टम्स बनाए गए हैं, बायोडायवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए, और जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, फ्लोरा एंड फौना है, उनको कंजर्व करने के लिए ये सारी चीजें सरकार द्वारा बनाई गई हैं। हम सभी को अपनी अति जीविता के लिए प्राकृतिक परिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अधिविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। तो मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम काफी लंबा जिए, आगे तक जिए, तो इसकी वजह हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपना जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। इकोसिस्टम को हार्म नहीं पहुंचाना है, उसका जो बैलेंस है उसे बना के रखना है। नाउ कम टू दिस पिक्चर जो ऊपर दी हुई है। प्रवासी पक्षी मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मन पसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहां लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लैमिंगोए हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसले बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं? मतलब कुछ ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो कि दूसरे देशों से हमारे देश में आते हैं। अगर आप साइबेरियन क्रेन देखोगे तो वो भी दूसरी देश से आती है हमारे यहाँ, और ये जो ज्यादातर आपको रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात का, वहां पर देखने को मिलेंगे। ये दलदली क्षेत्रों में अपने घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। तो अगर हम वहां का वो क्षेत्र ही बिगाड़ देंगे, वहां पर हम डेवलपमेंट करने लग जाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने लग जाएंगे, तो ये पक्षी वहां आना ही बंद कर देंगे। तो इसकी वजह से अगर हम बचाना चाहते हैं कि ऐसी चीजें ना हो, तो हमें अपना इकोसिस्टम बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। नाउ कम टू दिस ब्लू बॉक्स। 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह बनवाई गई हैं, उसके यहाँ पे नाम है। सबसे पहला सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइक वोवा, अगस्त्य मलाई, कंचनजुंगा, पचमढ़ी, अचनकमर अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम और पन्ना। चलिए तो अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है वैकल्पिक प्रश्न। इसमें पहला है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? ऑप्शंस आर क तुंड्रा, ख हिमालय, ग मैंग्रोव या घ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका सही जवाब है घ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। सिंकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? पहला 100 सेंटीमीटर, दूसरा 70 सेंटीमीटर, तीसरा 50 सेंटीमीटर या चौथा 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। इसका आंसर है क 100 सेंटीमीटर। कम टू थर्ड वन। सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आंसर इज ग उड़ीसा। नाउ कम टू फोर्थ वन। भारत में कौन से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों के लिए नए हैं? फर्स्ट इज मानस, सेकेंड मत्रार की खाड़ी, थर्ड दिहांग दिबांग एंड फोर्थ नंदा देवी। एंड आंसर इज क मानस। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। इसमें पहला प्रश्न है, परिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र भौतिक पर्यावरण तथा इसमें निवास करने वाले जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता का तंत्र है। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छेद्य भाग है। वह वनस्पति तथा वन्य जीवों का प्रयोग करता है। दूसरे प्रश्न पर आ जाइए। भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? इसका आंसर है भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण निर्धारित करने वाले तत्व हैं, पहला उच्चावच, इसमें पहला है भूमि और दूसरा है मृदा। सेकेंड कैटेगरी है वातावरण, इसमें पहला है तापमान, दूसरा है सूर्य का प्रकाश और तीसरा है वर्षण। अब तीसरे प्रश्न पर आ जाइए, जीव मंडल निचय से क्या अभिप्राय है, कोई दो उदाहरण दो। इसका आंसर है जीव मंडल निचय यानी कि बायो रिजर्व एक संरक्षित जीव मंडल जिसका संरक्षण इस प्रकार किया जाता है कि ना केवल इसकी जैविक विभिन्नता संरक्षित की जाती है अपितु इसके संसाधनों का प्रयोग भी स्थानीय समुदायों के लाभ हेतु टिकाऊ तरीके से किया जाता है, उदाहरण नीलगिरी और सुंदरबन। चौथे प्रश्न पर आ जाइए, कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति से मिलते हैं, वनस्पति में मिलते हैं। इसका आंसर है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाले पशुओं में हाथी, बंदर, लेमूर, एक सींग वाले गैंडे और हिरण हैं। पर्वतीय वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारासिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आईबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। चलिए थर्ड मेन क्वेश्चन पर आ जाइए, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। इसमें पहला है वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। तो इसमें सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ेंगे वनस्पति जगत का। इसमें पहला पॉइंट है किसी क्षेत्र विशेष अथवा अवधि में भूपरपटी पर पाई जाने वाली सभी प्रकार की पौधे की प्रजातियां को वनस्पति कहा जाता है। एंड फर्स्ट पॉइंट इन प्राणी जगत इज किसी क्षेत्र विशेष या अवधि में भूपरपटी पर पाई जाने वाली सभी प्राणियों की प्रजातियों को वन्य प्राणी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, वनस्पति जगत में ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट, प्राणी जगत में ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते अपितु वनस्पति जगत पर निर्भर होते हैं। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि जो प्लांट्स होते हैं यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य की रोशनी से अपना खाना खुद बना लेते हैं, उनको किसी से खाना मांगने की जरूरत नहीं होती है। आपने कभी देखा है किसी पेड़ पौधे को कि किसी से खाना मांग रहा है कि मुझे मेरा पेट भरना है, बल्कि वो हमें खाना देते हैं। यानी कि हम और जितने भी जानवर हैं वो सब प्लांट किंगडम पर यानी कि वनस्पति जगत पर निर्भर रहते हैं, हमें पेड़ पौधों से खाना मिलता है। और हमारे अंदर भगवान ने हमें वो शक्ति नहीं दी है कि हम अपना खाना खुद बना पाए, इसलिए हम वनस्पति जगत पर निर्भर रहते हैं। चलिए दूसरे पर आ जाइए, सदाबहार वन और पर्णपाती वन। सदाबहार वन में पहला पॉइंट है ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है। पहला पॉइंट पर्णपाती वन में, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। सेकेंड पॉइंट इन सदाबहार वन, इन वनों में पौधे अपने पत्ते वर्ष के अलग अलग महीनों में गिराते हैं जिससे ये पूरे वर्ष हरे भरे नजर आते हैं। सेकेंड पॉइंट पर्णपाती वन में, इन वनों में पौधे अपने पत्ते शुष्क गर्मी के मौसम में 6 से 8 सप्ताह के लिए गिरा देते हैं। थर्ड पॉइंट इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, इन वनों में प्रायः पाए जाने वाले पशुओं में हाथी, बंदर, लेमूर, एक सींग वाले गेंडे और हिरण हैं। और पर्णपाती वनों में प्रायः पाए जाने वाले पशुओं में शेर और बाघ हैं। सदाबहार वन पशुओं के अतिरिक्त इन वनों में बहुत से पक्षी, चमगादड़, बिच्छू एवं घोंघे आदि पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट पर्णपाती वन में, इन पशुओं के अतिरिक्त इन वनों में बहुत से पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए आदि पाए जाते हैं। पांचवा पॉइंट सदाबहार वन में, ये वन पश्चिमी घाट की ढलानों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भागों, तटीय तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा एवं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। पांचवा पॉइंट, पर्णपाती वन में, ये वन भारत के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के पास की पहाड़ियों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पूर्वी घाट के पूर्वी ढलानों, मध्य प्रदेश तथा बिहार में पाए जाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, सदाबहार वन का, इन वनों में प्रायः पाए जाने वाले वृक्षों में आबनूस, महोगनी, रोजवुड आदि हैं। और सिक्स्थ पॉइंट, पर्णपाती वन में, इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ों में सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, नीम आदि प्रमुख हैं। चलिए अब चौथे प्रश्न पर आ जाइए। भारत में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाली वनस्पति के नाम बताएं और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। ब्यौरा यानी कि उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो इसका उत्तर है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पति निम्नलिखित हैं। सबसे पहला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, चौथा पर्वतीय वन और पांचवा मैंग्रोव वन। अब हमें इसमें ब्यौरा देना है ऊंचाई के हिसाब से कौन सी वनस्पति होती है। तो इसमें सबसे पहला है, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। सेकंड, 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। तीसरा पॉइंट, 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्पूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। फोर्थ, ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। फिफ्थ, अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। अब आ जाइए प्रश्न पांच पर। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण दीजिए। इसका आंसर है, मनुष्य के लालच के कारण जीवों तथा पादपों को अति दोहन हो रहा है। मनुष्य पेड़ों को काटकर तथा पशुओं को मारकर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा कर रहा है। इसके कारण बहुत से जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। छठे प्रश्न पर आ जाइए। भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है? तो इसका आंसर है, भारत में पृथ्वी की लगभग सभी भौतिक विशेषताएं मौजूद हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार एवं द्वीप आदि। ये पांचों कारक भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत की वृद्धि एवं विकास के लिए या जैविक विविधता के लिए अनुकूल है। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर, एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे फर्न, एल्गी तथा फंजाई। भारत में लगभग 79,000 जातियों के जानवर तथा ताजे तथा समुद्री पानी के विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मृदा, आर्द्रता एवं तापमान में अत्यधिक विभिन्नता के साथ अलग अलग प्रकार का वातावरण पाया जाता है। पूरे देश में वर्षा का वितरण भी असमान है। वनस्पति जगत एवं प्राणी की जगत की विभिन्न प्रजातियों को अलग अलग प्रकार की वातावरण संबंधी परिस्थितियां, विभिन्न प्रकार की मृदा चाहिए होती है। इसलिए भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी है। अब आ जाइए मानचित्र कौशल पर। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित दिखाएं और अंकित करें। इसमें पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और तीसरा है दो जैव मंडल निचय भारत के उत्तरीय दक्षिणीय पूर्वी और पश्चिम भागों में। तो ये आपको लोकेट करना है मैप पर। फिर आ जाइए परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अपने पड़ोस में पाए जाने वाले कुछ औषधि पादप का पता लगाएं। दूसरा है किन्हीं 10 व्यवसायों के नाम ज्ञात करो जिन्हें जंगल और जंगली जानवरों से कच्चा माल प्राप्त होता है। थर्ड, वन्य प्राणियों का महत्व बताते हुए एक पद्यांश या गद्यांश लिखिए। फोर्थ, वृक्षों का महत्व बताते हुए एक नुक्कड़ नाटक की रचना करो और उसका अपने गली मोहल्ले में मंचन करो। फिफ्थ, अपने या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के जन्मदिन पर किसी भी पौधे को लगाइए और देखिए कि वह कैसे बड़ा होता है और किस मौसम में जल्दी बढ़ता है। तो ये सारे जब आप काम करोगे, सारे इस टाइप के बनाओगे, आप प्रोजेक्ट वगैरह वर्क करेंगे जो भी इसमें दिया हुआ है, मैप वर्क करोगे, तो इससे आपको ये चैप्टर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और आपको मैप वर्क तो बहुत अच्छे से करना है क्योंकि वो आपके एग्जाम में अराउंड 5 to 6 नंबर का आता है, तो वो आपको बहुत इजीली मिल सकते हैं अगर आप मैप वर्क अच्छे से करें। चलिए, तो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। वी एंड आवर चैप्टर हियर। प्लीज कीप रिवाइजिंग।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।